परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना। मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हर किसी ये मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा, खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा।
ओम शांति। रूहानी क्रांति के सूत्र, रूहानी खुशबू, रूहानी खुशबू फैलाए, रूहानी प्यार की वाइब्रेशन मिले, ऐसी कुछ सूत्र में लेके आया हूं। पहले तो है, किसी एक व्यक्ति ने महात्मा को पूछा था कि रामचंद्र जी ने अयोध्या में ही क्यों जन्म लिया, कोई और जगह पे क्यों नहीं, पूरा भारत देश पड़ा है, ऐसा क्या लगा वहां उनको। तो महात्मा जी बहुत उत्तर देते हैं कहानी के रूप में कि एक नौजवान व्यक्ति जिसकी शादी हुई 2 साल हुए थे और उनको ससुराल जाना था, मतलब उनको पत्नी को लेने के लिए। शादी जब हुई तो रिवाज ऐसा था कि 2 साल के बाद हम भेजेंगे, तो ससुराल जाना है तो ठीक ठाक होके जाना पड़ता है। जैसे हम किसी मित्र के घर जाते हैं या मामा के घर जाते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन ससुराल जाना हो तो एकदम टिप टॉप बन के जाना होता है। तो वैसे ही यह नौजवान तैयार हुआ घर से पूरा, और पैदल जाना था, गाड़ियां तो होती नहीं थी उस टाइम, तो चले ससुराल जाने के लिए। चलते चलते 2-3 किलोमीटर हुआ तो एक नदी आई, नदी में पानी बह रहा था, गहरा पानी नहीं था लेकिन खड़ पानी, मतलब पूरा नदी दिख रही थी, वो ऐसा चल रहा था, कहीं पत्थर है कहीं घास लगे हुए हैं जो ऐसे, और कपड़े खराब ना हो इसलिए थोड़ा ऊपर चढ़ा लिया पैरों से, और ठीक ठाक वहीं पहुंचना था। तो पैर कहाँ रखता है, जहाँ पानी बहुत कम है, यहाँ पत्थर है, कहीं मिट्टी में ऐसे घास में कहीं ऐसे, और पैर रखते संभल संभल के चल रहा है, ऐसे नदी पार कर रहा है। तो सामने वाला किनारा जब आया, उनसे पहले बहुत सारी मिट्टी थी वहाँ, उनको ऐसा लगा कि ये मिट्टी का ढेर है जो वहाँ मैं पैर रख के किनारा चढ़ जाऊँ, और पैर भी रखा वहाँ और चढ़ गया ऊपर, नदी का किनारा पार हो गया। लेकिन पार होने के बाद उनको ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है यहाँ, मतलब कुछ लगा ऐसे, कुछ है वहाँ, मिट्टी नहीं थी मतलब। तो मुड़ के देखा उसने तो गाय, जो वृद्ध गाय थी जो पानी पीने आई होगी वहाँ, जो मिट्टी में धस गई थी। तो पहले दिखाई नहीं दिया, जल्दी जल्दी में वो तो ससुराल जाने की धुन में था, वो नहीं मरना पड़ा। तो गाय ने भी सोचा कि मनुष्य होके मेरे ऊपर पैर रख के ये नदी पार कर रहा है, मुझे बाहर निकालने की बजाय वो मेरे ऊपर पैर रख दिया। तो गाय के अंदर से मतलब एक श्राप निकला, मतलब उनको एहसास हो रहा है, वो व्यक्ति को भी एहसास हो रहा है कि श्राप दे दिया मतलब। तो फिर वहां डर गया, डर से वो फिर भागता है वहां ससुराल घर की ओर, अभी दूर था, और फिर वहां से दौड़ा हुआ डर के मारा। तो वहां जब वह घर पहुंचा ससुराल के गांव, तो सासू ससुर ने सब देखा, और बहू भी उनकी थी जो शादी हुई थी, वो सबने देखा इतना कि श्वास फूल गई, इतना ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे भाग के क्यों आ रहे हैं आप। तो बोले ऐसा ऐसा हुआ, पूरी बात बताता है वो। तो और इतने में तो पूरी बात बताई, जैसे वो श्राप लग गया, मतलब श्राप भी पहुंच गया और पशु माफिक हो गया। गाय ने श्राप यह दिया था कि तुम इंसान हो के मुझे बाहर नहीं निकालते हो तो पशु माफिक हो जाओगे, तो वही हो गया। तो सभी डर गए वहाँ भी, उनकी पत्नी भी रोने लगी, ससुर भी सब दुखी हो गए, आसपास वाले भी इकट्ठे हो गए। सबने देखा कि ये क्या हो गया अचानक। तो किसी ने बोला कि भाई देखते काम नहीं चलेगा, कुछ उपाय बताओ इनका क्या है, क्या कर सकते हैं इनके लिए। तो किसी ने कहा कि कोई पतिव्रता स्त्री जो एक ही पुरुष को अपना पति मानती हो, ऐसी स्त्री जो एक पानी का घड़ा उसके ऊपर डालेगी तो वापिस वो पहले था वैसा ही ठीक हो जाएगा। तो सब एक दूसरे के सामने देखने लगे, ऐसा कौन है मतलब वो। तो कोई तैयार नहीं हुआ। किसी ने कहा कि अपना जो महाराज है उनको मिलो, उनको बात बताओ ऐसा ऐसा हुआ है। तो राजा ने महारानी को बुलाया, राजा को पूरी बात बता दी पहले कि ऐसा ऐसा हुआ है घटना। तो महारानी ने कहा कि मैं आपको ही पति मानती हूँ, दूसरा कोई मेरे मन में ख्याल कभी नहीं आया है, लेकिन मैं बचपन में जो गुड़ी गुड़ियों का खेल खेलती थी मेरी सहेलियों के साथ मेरे मायके वहाँ, तो हो सकता है कुछ ख्याल मेरे गुड्डे के इस तरफ हुआ हो, किया नहीं लेकिन ऐसे हुआ हो। इतनी भी अपवित्रता होकर है तो अगर उनको व्यक्ति को सफलता ना मिले तो ये गलत हो जाएगा। इनसे अच्छा है कि मैं एक राय देती हूँ कि आप अयोध्या चले जाइए, राजा दशरथ जी मिलिए, वहाँ आपको 100% काम हो जाएगा आपका। तो वहाँ महाराज को पूरा बात बताते हैं क्या जो हुआ शुरू से। तो दशरथ राजा ने कौशल्या रानी को बुलाया कि ऐसी ऐसी बात हुई, अपने पास वाले राज्य में एक नौजवान को श्राप लगा है तो आपको जाना है। तो रानी तो समझ गई, मैं अभी जाती हूँ। वो तो जाने के लिए तैयार हो गई क्योंकि इमरजेंसी केस था ये, मतलब फटाफट जाना था। तो जैसे वो निकल रही थी इसने में दूसरी रानी जो सुमित्रा रानी थी उसने देखा, बात तो सबको पता चल गया था महल में। तो वो आई कहे कि दीदी आप मत जाओ, मैं जाती हूँ, मैं चली जाती हूँ। ठीक है आप जाओ। वो जाने के लिए तैयार हुई तो तीसरी रानी कही कही, उसने वो भी छोटी थी तीसरी, तो कहा कि दीदी आप रुको मैं जा रही हूँ, ठीक आप जाओ। वो तैयार होने लगी क्योंकि फटाफट सब हो रहा था। इसमें उनकी दासी आई, मंथरा के अलावा दूसरी कोई थी वो। तो उसने कहा कि रानी साहिबा आप क्यों जा रही, तकलीफ ले रही है, मैं हूं ना आपकी, मैं आपकी दासी हूं, ये काम तो मैं करके आ जाती, इसी क्या बात है, ठीक है आप जाओ। तो उनके लिए रथ तैयार करवाया, रथ चलाने वाला जो रथी था उन्होंने रथ तैयार किया और कहा कि आप चलो बैठ जाओ इसमें। लेकिन दासी ने कहा कि आप रुको, वो रथ रथी को कहा मैं खुद चला के जाऊंगी, मैं स्पीड में चलाऊंगी और जल्दी जाऊंगी, जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो वो महारानी का रथ था उसमें बैठकर वो खुद चला के वो अयोध्या के बाजार से निकलती है, तेजी से रथ चलाती है। तो अयोध्या के बाजार से यूं जैसे रथ जा रहा है तो रास्ते में एक महिला जो रास्ता साफ झाड़ू लगा रही थी, उन्होंने देखा अभी ये इस समय रथ इतनी तेजी से कौन लेके आ रहा है। तो दूसरे तो नहीं देख, पास में जो रथ आया तब देखा, अरे ये तो दासी। तुरंत वो रास्ते में खड़ी हो गया, हाथ पसार के रास्ता रोक के। तो वो दासी नजदीक आई, रथ नजदीक आया तब कहा, अरे तुम रटो रास्ते से मुझे, मैं जल्दी में हूं। अरे नहीं पहले आप बताओ क्या बात क्या है, इतनी स्पीड में क्यों जा रही है। अरे मैं वापिस आके बताऊंगी। नहीं नहीं अभी आप अभी मुझे बताओ। तो उसने पूरी बात बताई, ऐसा ऐसा हुआ है राज्य में, जो एक पास वाले राज्य में नौजवान को श्राप लगा है, मैं जा रही हूँ। वो तो समझ गई क्या बात है ये, तो तुम क्या समझती हो मुझे छोड़कर तुम जाओगे, चले जाओगी महाराज के आगे कि हमारी नाक कटवाओगी। महाराज क्या सोचेंगे कि हमारे राज्य में रैयत को मतलब जनता को इतना भी पता नहीं होगा कि पवित्रता क्या होती है, पतिव्रता क्या होता है। तुम ऐसा करो रथ वापस ले जाओ, महारानी को और भी कुछ काम होता है तो रथ काम में आएगा, काम पड़ सकता है, तुम वापस जाओ रथ भी ले जाओ, वो काम तो मैं करके आती हूँ। झाड़ू लगाने वाली महिला जो थी तो हाथ में जो झाड़ू था वो टोकरा था जो कचरा भरने का वो साइड में रख दिया, दासी को तो वापस भेज दिया। वो रथ भी नहीं चाहिए मुझे, और उन्हें कपड़ा थोड़ा ऊपर चढ़ा लिया उसने भी दौड़ लगाने के लिए, ऐसे दौड़ते हैं लोग महिला, थोड़ा ऊपर करके दौड़ लगाई उसने। हाँ पीटी उषा उसी की तरह ही। तो दौड़ के वहां पहुंच गई तो वो काम वो करके आ गई। तो कहने का मतलब है कि महारानी से लेके एक झाड़ू लगाने वाली महिला, पूरी जनता में ये बात, सबको ये संस्कार ऐसे थे पवित्रता और पतिव्रता वाला, इसलिए रामचंद्र जी ने वहां जन्म लिया। तो दूसरी बात है, जो 1947 में जो भारत देश आजाद हुआ, तो राजा रजौड़ा को जो राज था वो भारत सरकार ने सबसे वापस ले लिया लिखित। तो पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल उनका थोड़ा ग्रुप गुजरात में आए थे भावनगर में, तो भावनगर के महाराजा के वहाँ ये लिखाई करना करानी थी उसको। तो सब बात हो गई, लिखाई जो भी करना था वो जो साथ में लोग थे वो सब लिखाई पूरी कर ली। फिर साइन करना बाकी था, तो साइन करने से पहले महाराज ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा कि मैं थोड़ा महारानी से बात करना चाहता हूँ, कुछ समय चाहिए मुझे थोड़ा। तो वल्लभ भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, आप जितना समय लेना चाहो ले लो, बात कर सकते हो। तो महाराज वो महारानी के पास गए, कहा कि अपना पूरा राज्य जा रहा है, तो मैं आपके पास ये पूछने आया हूँ कि आपकी जो निजी संपत्ति है जो आपको दहेज में मिली थी, क्योंकि तो राजा की कुंवरी थी वो, तो उस जमाने में बहुत दहेज देते थे, जमीन सोना चांदी वगैरह बहुत कुछ, तो उसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, आपका ही अधिकार है, और किसी सरकार का या किसी व्यक्ति का भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, अगर आप जो चाहे वो कर सकती है, तो उनका क्या करना है मतलब। तो महारानी ने कहा कि जब पूरा हाथी जा रहा हो तो हाथी का श्रृंगार नहीं उतारना चाहिए, हाथी का श्रृंगार भी रहने दो, जाने दो, कोई बात नहीं। तो इतना वो मतलब नष्ट मोह थी व्यक्ति, और मतलब कोई वैभव में उनको मोह नहीं था। बाबा ने आज की मुरली में भी बताया है कि व्यक्ति और वैभव में मोह नहीं रखना है, देह और देह के संबंध में भी नहीं रखना है। तो ये देखो, बाबा का ज्ञान तो नहीं था भक्ति मार्ग वाले, लेकिन सेकंड में जवाब दे दिया। महाराज का शब्द पूरा भी हुआ उनसे पहले, उनके कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सलामत है, आप मेरे हैं, वो मतलब सब कुछ है मेरे पास। जैसे मीरा कहती थी, मेरा एक गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, लेकिन उनसे पहले उनका पति जो था भोजराज, वही एक पुरुष को उनके माना था, और कोई नजर उसकी नहीं थी, लेकिन उनका देवर बहुत खराब था, इसलिए मीरा बाई को महल से निकाल दिया था कि आप महल में नहीं रह सकती, यहाँ भक्ति नहीं कर सकती है, हमारे बड़े बड़े लोग आते हैं, हमको शर्म लगती है। तो छोटा सा मंदिर एक दूसरा बनवा दिया था, जो मंदिर आज भी है चित्तौड़गढ़ में गढ़ के ऊपर, जहाँ मीरा बाई को अलग से रखा था। तो फिर वहाँ से भी मीरा बाई जब समय पूरा हुआ तो वहाँ से चली आई, पहली बार गुजरात आई थी द्वारका। तो वहाँ जो मंदिर था, वहाँ मंदिर में मूर्ति आज भी नहीं है, मूर्ति वो लेके आ गई कि चलो कन्हैया हमारा दाना पानी यहाँ पूरा हुआ, हम चलते हैं कहीं और। तो द्वारका आई, वहाँ भी व्यापार जैसा लगा उनको भक्ति में सब, तो वहाँ से भी छोड़ दिया उसने, कहीं वापस राजस्थान में दूसरे कोई गांव में आई, वहीं उन्होंने जीवन बिताया और शरीर भी वहीं छोड़ा राजस्थान में ही। तो दूसरी एक बात है जो बाबा कहते हैं कि मौन भट्टी करना, मौन में रहना, मुरली मंथन करना, जो विचार सागर मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा बाबा कहते हैं। तो ऐसी ही एक बात जो है, महावीर स्वामी प्रवचन देने वाले थे तो पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाया था, अनाउंसमेंट तो नहीं उसी सुविधा थी उस टाइम, ढिंढोरा पिटते थे पूरे शहर में वो किया, और आसपास गांव वाले में भी किया कि महावीर स्वामी प्रवचन देने वाले हैं 15 दिन के बाद ये सब। तो 15 दिन के बाद जब ये इकट्ठे हुए, एक बड़ा ग्राउंड था उसमें आए लोग सभी, सबको बहुत इंटरेस्ट था ये प्रवचन सुनने वाले, चलो काफ़ी समय से हमने नहीं सुना है तो आज सुनते हैं। तो 15 दिन के बाद सब ये व्यवस्था हो गई, और मंच पर महावीर स्वामी बैठे, 5 शिष्य उनके साथ में थे। और स्वामी जी का एक नियम है कि कुछ भी बात करने से पहले, प्रवचन करने से पहले मौन में बैठ जाते हैं, योग में मतलब, उनका इष्ट देव जो है उनकी याद में बैठ जाते हैं, फिर वो बात करते हैं। जो प्रेरणा आती है उनसे। तो मौन में बैठ गए, 10-15 मिनट हुई, मौन में है सभी, जनता भी मौन में सब। एक कुछ लोगों को ऐसा ख्याल चला कि शायद स्वामी जी को देर लगेगी, इसलिए हम चलते हैं, हमारा तो काम है, टाइम हो गया, हम जा रहे हैं, हम दूसरी बार देख लेंगे या तो किसी और को पूछ लेंगे। कुछ लोग चले गए, फिर 10 मिनट और हुई, उसके बाद कुछ लोग और चले गए, उनको भी ऐसा ख्याल चला कि चलो हम भी चलते हैं। तो ऐसे करते करते 3-4 बार ऐसा हुआ और काफ़ी मैदान खाली हो गया जो लोग आए थे सुनने के लिए। उसके बाद स्वामी जी ध्यान से वापस आए, आँख खोलते हैं, तब एक शिष्य ने पूछा कि स्वामी जी सभी लोग आपको इंटरेस्ट से आपको सुनने के लिए आए थे, तब आप नहीं बोले, अब थोड़े बहुत ही रह गए हैं गिने चुने, और तब आप ये प्रवचन देने जा रहे हैं, ऐसा क्यों? बोले इसमें ऐसा है कि जो व्यक्ति मौन में रह सकता है, मौन हजम कर सकता है, वही मेरी वाणी हजम कर सकता है। इसलिए एक अपने जैसे बाबा ने बताया अष्टशक्ति, अष्टशक्ति में एक शक्ति है सहन शक्ति, जो आम का पेड़ दिखाते हैं और 8-10 साल का लड़का एक और जो पत्थर मारता है और आम गिराने के लिए, ऐसी ही घटना, एक सत्य घटना 80 साल पहले राजा रजवाड़ा में हो गई, जूनागढ़ में, सत्य घटना प्रैक्टिकल में हो चुकी है पहले। तो वहाँ जो राजा था उनका महल था, उनका जो बगीचा था सब पूरा, आसपास पूरी बाउंड्री थी और साथ में बाड़ भी लगी थी, छोटे मोटे पेड़ जो लगे हैं ना सब। तो इसमें एक पेड़ था बेर का, एक तो छोटे छोटे बेर आते हैं उनका छोटा पेड़ होता है, ये नहीं, एक बड़ा पेड़ आता है जो बड़े बड़े बोर आते हैं, बेर वो नहीं, मीडियम वाला, और पेड़ उसका बड़ा होता है। तो वो वहाँ से एक बाहर से एक लड़का निकला और पत्थर मारने लगा बेर लेने के लिए। और उस वक्त क्या हुआ कि महाराज और उनके मंत्रिमंडल वगैरह कुछ बगीचे में बैठे हुए थे अंदर की साइड में, ये लड़के को पता नहीं था, बाहर से नहीं दिखता, बाउंड्री बड़ी थी और सब दिखाई नहीं देता था। तो उनका मतलब था बस वो बेर चाहिए, तो 4-5 पत्थर मारे, उसमें एक पत्थर डायरेक्ट अंदर गया जहाँ महाराज बैठे थे, और महाराज को ही लगा। तो सब दौड़े, अरे एक पत्थर किसने मारा? तो बाहर आके देखा तो वो लड़का बेर चुन रहा था नीचे से, और हाफ पैंट पहना हुआ था, उस बड़ी जेब थी उसमें भी बेर रखे थे, रात में भी था। तो वो आए राज के लोग, देख लिया कि ये लड़का यही है, तो उनको पकड़ के अंदर लाए, हाथ में बेर था। तो महाराज ने पूछा कि पत्थर तुमने मारा? जी महाराज, पत्थर मैंने मारा, मतलब मैं तो पेड़ को मार लगा रहा था, मुझे बेर चाहिए। तो पेड़ तो कुछ बोलता नहीं है, कोई भी पेड़, जैसे कहते हैं कि पेड़ तो परोपकारी है, खुद फल नहीं खाता है, नदी अपना जल नहीं पीती है, ऐसे परोपकारी है। तो राजा ने पूछा कि आपको बेर मिले? हाँ माँ जी महाराज, ये रहा देखो, हाथ में था, पूरा हाथ भरा था दोनों। तो राजा ने सोचा कि पेड़ कभी बोलता नहीं, पत्थर मारा फिर भी उनको इतना बेर दिया, तो मैं तो राजा हूँ, बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो उनका जो कारभारी व्यक्ति था राजमहल का, राजा ने कहा कि आप सोना मोहर लेके आओ। और सोना मोहर लेके आए, जो थैली में छोटी बड़ी होती है सब, तो उसमें सोना मोहर पूरी वो लड़के को दे दिया कि पेड़ जो दे सकता है तो मैं क्यों नहीं दे सकता, ये पत्थर मारा तो बेर मिलता है, तो मैं तो, मेरे पास है सब कुछ, इतना तो डांट फटकर कुछ नहीं, वो तो बात ही नहीं, डायरेक्ट यही बात, सत्य घटना प्रैक्टिकल में हो चुकी है पहले, 80 साल पहले। और जैसे को आपने योग में बैठते हैं ना, याद में तो कोई कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता, मोहन हमारा बाढ़ भटकता है, कई लोगों को ऐसा होता है ध्यान में बैठने के बाद। ऐसी घटना एक पिक्चर की है, लैला मजनू, जो 75 में रिलीज हुआ था। तो इसमें लैला जो है, लैला तो बहुत बड़े घराने की थी, पैसे वाले की, और मजनू था बहुत गरीब था। तो उसको एक नहीं होने दिया लोगों ने, उनके जो लैला के परिवार ने और गांव के लोगों ने भी, पत्थर मार मार के मजनू को भगा दिया। तो मजनू जा रहा था, सिटी से बाहर निकल गया, बाहर के गांव आने लगे। वेट ने अपनी धुन में जा रहा, उनको नहीं पता मैं क्या हो रहा है, बस वो तो लैला की धुन में था, बस लैला लैला मुझे चाहिए और कुछ नहीं, इतना सच्चा और पक्का प्यार था उसका। तो आगे चलते चलते गांव भी चले गए, रेगिस्तान आ गया, बिल्कुल वीरान जगह। तो ऐसे ही नुमा शाम हो गई थी और एक मुसलमान बिरादर नुमा शाम का योग क्या कहते हैं नमाज पढ़ते थे, वो बैठा था। अब मजनू को ये पता नहीं कि यहाँ कोई बैठा है या कुछ कर रहा है, वो तो जा रहा है बस ऐसे, कहाँ जा रहा है वो कुछ पता नहीं उनको, लैला की धुन में जा रहा था। तो जो नमाज पढ़ रहा था उसने देखा, वो मजनू आगे से गुजरा थोड़ा 20-30 फुट आगे से, तो नमाज पढ़ रहा था वो व्यक्ति बोला, अरे कमबख्त मैं यहाँ नमाज पढ़ रहा हूँ और आपको अब सामने से गुजर रहे हो, आपको इतना भी पता नहीं कि जहाँ कोई प्रे कर रहा है या तो ये नमाज पढ़ रहा है तो सामने से नहीं गुजरना चाहिए। तो उसने ठीक से सुना नहीं, हो थोड़ी बहुत आवाज़ आई थी, लेकिन दोबारा कहा उसने, तब तो उसने मुड़ के देखा मजनू ने कि कुछ आवाज़ आई। तो उसने मजनू ने कहा कि आप मुझे कह रहे हो, हाँ मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मैं यहाँ नमाज पढ़ता हूँ और तो सामने से गुजर रहे हो, इतनी भी समझ नहीं तुम्हें। तो मजनू जवाब देता है कि अरे भाई मुझे अभी कोई सुध-बुध नहीं है, मैं लैला की धुन में जा रहा हूँ, मुझे लैला चाहिए, मैं उसके प्यार में पागल हूँ। एक जो व्यक्ति है मनुष्य है, मनुष्य को पाने के लिए मैं इतना बेचैन हूँ, इतना पागल हो गया हूँ मैं, मुझे कुछ पता नहीं आगे पीछे क्या हो रहा है, और आप तो अल्लाह ताला को याद करने बैठे हो जो विश्व का मालिक है, इतना बड़ा हस्ती है उनको आप याद करने बैठे हो और आपको ये भी पता चल गया कि सामने से कौन गुजरा, कहाँ ध्यान है आपका? तो पूरा ध्यान नहीं, बात मैंने ये चीज है। तो समय तो हो रहा अपना, लेकिन एक कविता मैंने कोरोना के बारे में लिखी है, अगर आप इजाजत तो सुनाओ 10 मिनट का बातें तो और भी है लेकिन रख देता हूँ मैं, सुनाओ कोई, इसमें बहुत खुशबू इसमें भी है। तो कविता के रूप में है ये। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में भक्त लोग पुकारते हैं भगवान को कि हे प्रभु दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे, हे दुख हरता दुःसुख करता हमें दुख दर्दों से मुक्ति दिलाओ, भक्त बच्चों की सुनकर अरज भगवान को आया तरस, परम धाम से आए तुरंत भगवान ने कहा कि भक्त बच्चों अब करो ना शादी, क्योंकि सुख शांति चाहिए ना, इसलिए अब करो ना शादी तो मिलेगी सुख शांति, भक्तों ने यह बात ना मानी और कर ली शादी तो हो गए कोरोना बीमारी से परेशानी, इस बीमारी से भक्तों ने बेचैनी पाई, तब अस्पतालों में बहुत चक्कर लगाई इलाज के लिए, फिर भी ना मिल पाई चार पाई, इलाज कराने के लिए रुपया पैसा इकट्ठा करने के लिए धंधा धोरी के सागर में डुबकी लगाई, फिर भी गृहस्थी भक्तों की झोली ना भर पाई, क्योंकि महंगाई बढ़ाने में सरकार कभी ना शर्माई, कोरोना बीमारी की वजह से भारत सरकार ने लॉकडाउन कराई और कोरोना वायरस ने भयंकर बीमारी फैलाई, इसीलिए हर एक मनुष्य के मुख पर मास्क पहनाई, घर में ही रहना और घर का ही शुद्ध भोजन बनवाकर खिलाई पिलाई, भारत सरकार ने मनुष्यों को कोरोना बीमारी से बचाने के लिए बड़ी अच्छी पाबंदी लगाई, ताकि खाऊधरा मनुष्य होटल रेस्टोरेंट लारी गल्ला पर भेलपुरी पानीपुरी ऊपर अपना मुख ना मार पाई, इसलिए मास्क पहनाई, जिन्होंने ये बात नहीं मानी उन्होंने पकड़ी चार पाई, फिर तो क्या कहना और क्या पूछना, यमराजा की आई सवारी, यमराजा की टीम ने बड़ी जहमत दिखाई, लाखों की तादाद में मनुष्य आत्माओं को उठा ले जाई, यहां कोई भी कुछ ना कर पाई, कहते रह गए हाय हाय, लाखों की जान चली गई, हाय हाय करते रह गए कुछ नहीं कर पाए, यमराजा ने इतना भी समय ना दिलाई कि कोई बोल सके राम बोलो भाई राम रमाई। कोरोना बादशाह ने धरती पर अपनी राजधानी बसाई, फिर भी बेसमझ मनुष्य अपने बच्चों की कराते हैं सगाई। तब स्वयं भगवान बार बार देते हैं गीता ज्ञान सुनाई कि सावधान कन्या ना पधराओ, फिर भी कई लोगों ने कर ली है शादी। अब सुनो इनकी जीवन कहानी। पत्नी कहती है अपने साजन को कि मुझे न्यू मार्केट में शॉपिंग करने ले जाई, वहां मैं कितनी भी चीजें खरीद कर लाऊं पर तुम कर दो इस बिल की भरपाई, फिर हमको समोसा पकौड़ा पिज्जा खिलाई, साथ साथ आइसक्रीम चॉकलेट भी खिलाई, फिर बाग बगीचे में मुझे हाथ पकड़कर नहीं पर अपनी गोद में उठाकर ले जाई, क्योंकि तुमने मुझे शादी के मंडप में चार फेरे जो घुमाई, फूलों की माला भी पहनाई, सजी सजाई घोड़ी पर चढ़े थे ना, अब तुम गधा बनकर ये बोझ उठाई। अब समझ में आई, क्योंकि तुमने मुझे अपने बच्चों की बनाई आई, अब मैं जो चाहूं जहां जाऊं तुम मेरे पीछे पीछे आई, अब घर में सभी बच्चों के कपड़ों की करो धुलाई और टूटे हुए कपड़ों की करो सिलाई, मेरी सहेलियां अपने घर में कितनी भी आए उनको भी तुम खिलाई पिलाई, अब इस गृहस्थी चक्र से तुम कहीं ना जा पाई, अब तुझे सब कुछ देता है दिखाई, इसीलिए अब गृहस्थी आशिक को प्रभु की याद आई और अग्निदेव की आह्वान कराई कि हे प्रभु आपने मेरी शादी क्यों कराई, ऐसे झूठे पापी संसार से मुझे लियो बचाई, क्योंकि मुझे देते थे शादी की झूठी बधाई, अब मुझे पता चला कि ऐसी झूठी मासूका ने मेरे साथ की है बड़ी ठगाई, इसीलिए हे प्रभु आपके साथ कराओ मेरी सगाई, जैसे शादी के मंडप से रुक्मणी जी को आप उठा ले गए भगाई, ऐसे मुझे भी झूठे संसार से कराओ मेरी विदाई, प्रभु प्लीज आप मुझे पवित्र अंगूठी पहनाइए। कौरवों का हाथ लगने से पहले 16,108 गोपियों को आपने ली बचाई और माउंट आबू की ऊंची पहाड़ी पर मधुबन में बसाई, फिर इन गोप गोपियों ने अपना सौभाग्य बनाई और आपने सतयुग की राजाई दिलाई, फिर पुष्पक विमान में बिठाकर खुशियों में उड़ाई, चलो प्रभु यह पुरानी दुनिया से करो बाय बाय।
पढ़ी थी लेकिन वो मुझे पता है पढ़ी, लेकिन उसमें मुझे कैसा रूहानी खुशबू पता है, लेकिन एक बातें नहीं निकल रही मुझसे मैं क्या सुनाऊं, मैं कुछ बातें तो चाहिए ना क्या। ओम शांति।